ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 33 श्लोक संख्या 34 सिद्धचारण गंधर्वै मुनिभिश्च अप्सरागणै स्वयमान समुद्रेण दत्तहाणं निकेतना सिद्धचारण गंधर्वै सिद्धचारण गंधर्वै मुनिभिश्च अप्सरागणै। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जब वे उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे तो चारण गंधर्व मुनि तथा अप्सराओं ने उनकी स्तुति की और सब प्रकार से उनका सम्मान किया। समुद्र ने उनका पूजन किया और रहने के लिए स्थान दिया। तात्पर्य कहा जाता है कि कपिल मुनि अपने हिमालय की ओर गए और वहां गंगा के उद्गम की खोज की। फिर वे गंगा के मुहान पर समुद्र में आए जिसे आजकल बंगाल की खाड़ी कहते हैं। सागर ने उन्हें रहने के लिए स्थान दिया जिसे आज भी गंगा सागर कहते हैं, जहां गंगा नदी समुद्र से निकलती है। यह स्थान गंगा सागर तीर्थ कहलाता है और आज भी लोग वहां जाकर सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिलों को नमस्कार करते हैं। दुर्भाग्यवश किसी एक पाखंडी ने इस सांख्य प्रणाली की मनमानी व्याख्या की और उसका भी नाम कपिल है, किंतु वह प्रणाली श्रीमद् भागवत के वर्णित कपिल के सांख्य से मेल नहीं खाती। अनुवाद की मेरा पीछे थोड़ा कृपया दोहराया। जब वे उत्तर दिशा की और जा रहे थे तो चारण गंधर्व मुनियों तथा अप्सराओं ने उनकी स्तुति की और सब प्रकार से उनका सम्मान किया। समुद्र ने उनका पूजन किया और रहने के लिए स्थान दिया। श्री श्री कृष्णमलम श्री श्री गौर निताय श्री श्री राधे श्याम सुंदर महावदान्य गौर सुंदर की कृपा आप सभी वैष्णव की कृपा से श्रीमद् भगवत के जो कपिली शिक्षा की हम प्रयास समझने के लिए कर रहे हैं और जैसा कृष्णमलम बुलाएंगे बोलेंगे मुख में जिह्वा में प्रयास करेंगे आप सभी वैष्णव की कृपा से प्रयास कर रहे चर्चा करने के लिए। हरे कृष्णा। आप सभी की भागवत कक्षा में स्वागत है। भागवत की जो काल जो श्लोक चर्चा हुई थी काल के श्लोक मुकुंद प्रभु क्लास दिए थे वो 30 श्लोक नंबर अभी आजकल 34 के आ गया। किसी में तात्पर्य नहीं होने के नाते यहाँ 3 श्लोक को क्रॉस करके हम चर्चा कर रहे हैं, किंतु तो 31 नंबर श्लोक है वो ऐसा है इसकी मैं अनुवाद इसकी श्लोकिंग में उच्चारण कर लेता हूँ, इसके बाद में कपिल भगवान के बारे में थोड़ा बताएंगे। तद्वीर आसित पुण्यतमम क्षेत्रम त्रैलोक्य विश्रुतम नामना सिद्ध पदम जात्र ससंसिधि उपेयसुई। इसकी अनुवाद ऐसा है, हे विदुर जिस स्थान पर देवहूति ने सिद्धि प्राप्त की वह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह तीनों लोक में सिद्ध पद के रूप नाम से विख्यात है। दूसरी 32 नंबर श्लोक है सही है। तस्या तत जोग विधुत मत्यम मर्त्येम भूत सरिता स्तोत्र सा प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्ध से विता। हे विदुर, उनके शरीर के तत्व पिघल कर जल बन गए और अब समस्त नदियों से सबसे पवित्र नदी के रूप में बह रहे हैं। जो भी इन नदी में स्नान करता है उसे सिद्धि प्राप्ति होती है, अतः सिद्धि के इच्छुक लोग उससे स्नान करते हैं। कपिलोपि महाजोगी भगवान पितुराश्रमात् मातरम समनुज्ञाप्य प्रागोद्रिचि दिशं जचौ जजौ। हे विदुर, मुनि भगवान कपिल अपनी माता की आज्ञा से अपने पिता का आश्रम छोड़कर उत्तर पूर्व दिशा की ओर चल गए। इसके बाद 34वें श्लोक को जो चर्चा हुई है, भागवत की जो चर्चा तो दीर्घ काल से सुन रहे हैं, प्रथम स्कंद दूसरा स्कंद से लेकर के सृष्टि तत्व के बारे में चर्चा हुई है। ये सृष्टि तत्व की किसी की व्याख्या स्वयं विदुर और मैत्रेय मुनि की संवाद है। विदुर की जिज्ञासा है, मैत्रेय मुनि ही बोल रहे हैं और जिसको सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को, बाद में सुत गोस्वामी बोलते हैं नमस्कारण में। इसी क्रम से अंपासा आ रहा है, एक क्रम बाई आ रहा है। ये मैत्रेय मुनि और विदुर जी की संवाद है, तृतीय स्कंद में जो पूरी चर्चा हुई है सुने होंगे सृष्टि तत्व की। सृष्टि में जब मनोन्तर की वर्णन हुई है, मनोन्तर के पुत्र की पुत्रियों से शुरू किए हैं वर्णन, जैसा कि मनु महाराज के स्वयंभू मनु की तीनों पुत्री हैं, उन्हीं की बारे में चर्चा करते हुए जो देवहूति माता के ऊपर चर्चा हुई, वो कैसा शादी किए, उनकी उन्हें बच्चे भगवान कैसा है, कपिलदेव भगवान प्रकट हुआ अपन कपिलदेव भगवान की शिक्षा, इसको वर्णन किया। आगे जाकर चौथा स्कंद में शुरू हो जाएगा, एक खत्म होने वाला है और दो तीन श्लोक है। वो मनु महाराज की पुत्र की वर्णन हो जाएगा, जहां पर ध्रुव महाराज की कथा आप लोग सुनेंगे चौथा स्कंद में। किंतु अभी पुत्रियों की कथा जो है, पुत्रियों की कथा में ये कदर मुनि की देवहूति की जो साथ में कपिलदेव भगवान की शिक्षा, इसे हमको प्राप्त हो रहा है। और कपिलदेव भगवान की करीब 25 अध्याय से लेकर की 32 अध्याय तक कपिलदेव भगवान शिक्षा दिए, सांख्य दर्शन की शिक्षा। असंख्य दर्शन की शिक्षा को प्राप्त करने के बाद में 33 अध्याय में उनकी माता की सिद्धि प्राप्ति, जीवन में जो सिद्धि प्राप्ति, इसी चर्चा हुई है। माता जी अपनी भगवान की भक्ति से किस प्रकार लीन होते हुए अपनी शरीर, जो ये शरीर था भौतिक दृष्टि से जड़ शरीर, किंतु भगवान की माता के नाते दिव्य शरीर था, और दिव्य शरीर नदी रूप में पिघल गया। जिस नदी में सिद्धो लोग जो चाहते सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और भक्तों लोग जाकर स्नान कर जीवन में सिद्धि प्राप्ति करते हैं आश्रम में। इसके बाद में जब उनकी माता जी सिद्धि प्राप्त किए, और इसके बाद में कपिलदेव भगवान माता जी के परमिशन ली है, परमिशन लेकर के उन्होंने उत्तर पूर्व दिशा को जाते हैं। वो जा करके आज के श्लोक में जब जाते हैं उत्तर दिशा को जा रहे हैं, वहां स्वर्ग की अप्सरा है, गंधर्व है और सिद्ध चारण लोग हैं, उनको स्वागत करते हैं, सम्मान देते हैं। और इसके बाद में भगवान कपिलदेव भगवान समुद्र किनारे को जाते हैं, जहां आज वर्तमान गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध। और गंगा सागर निकट जब भगवान कपिलदेव जाते हैं, समुद्र वे उनको प्रणाम करते हैं, उनको सम्मान देते हैं और रहने के स्थान देते हैं आश्रम बनाएंगे, जहां पर आज भी कपिलदेव आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है गंगा सागर। वहां प्रभुपाद यहाँ एक कमेंट करी बता है, आलोचना की है, ऐसा ही है भगवान कपिल के नाम से एक और एक पाखंडी कपिल था, उनकी नाम कपिल था, जिन्होंने सांख्य दर्शन को नास्तिक रूप में प्रचार किया है, शिक्षा फिलोसफी बनाया। अभी प्रश्न उठता सांख्य दर्शन क्या है, जो भगवान कपिलदेव ने शिक्षा दी सांख्य दर्शन नाम से प्रसिद्ध है। सांख्य दर्शन के ऐसा ही संस्कृत शब्द में देख रहा था, उसमें लिखा स्वहार दी है संबंध जोड़ना, इसकी अर्थ है संस्कृत की यदि हिंदी भाषा में तो सांख्य की अर्थ है। जैसा ही भगवत गीता में दूसरी अध्याय में प्रपद लिखे थे गीता के सार, किंतु वास्तविक की आचार्य लोग और वेदव्यास उसकी अध्याय के नाम रखे सांख्य योग, जोड़ना हो के सहार्ध्य स्थापन करना है, वो है भगवान के साथ में कृष्ण के साथ में जीवात्मा के जो संबंध है जिसी योग से जोड़ा जाता है उसको सांख्य बोलते हैं। भगवान के साथ में जीवात्मा के जो रिलेशन है वो विश्लात्मक रूप में तत्व रूप में चर्चा हुई है दूसरी अध्याय भगवत गीता में, इसको सांख्य कहा जाता है। कोई संख्या मतलब कोई गणती करा जाता है जोड़ना है ऐसे संख्या बोलते हैं गणित के रूप में संख्या। संख्या मतलब कि है जो सौहार्द्य स्थापन करता है भगवान के साथ में जीवात्मा जो रिलेशन है जो स्थापन करता है उसको संख्या बोलते हैं। वो रिलेशन जैसी प्रकार भगवत गीता में दूसरी अध्याय में भगवान आत्मा की ज्ञान दी, ये आत्मा के स्वरूपगत क्या है, आत्मा भौतिक संसार की चीज नहीं है, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण के अंश है, और वो श्री कृष्ण के अंश की कैसा कैसा वो आत्मा की व्याख्या किए हैं। इसी प्रकार कपिलदेव भगवान यहाँ पूरी तरह वो तो एक अध्याय में भगवान गीता की सांख्य दर्शन व्यवस्था की है, किंतु कपिलदेव भगवान इस सांख्य दर्शन को इसी प्रकार विस्तार रूप में प्रकट करा है, कोई भी पढ़ेगा तो पूरी तरह से समझ सकता है। वो कृष्ण के साथ उनका रिलेशन कैसा जोड़ सकता, कृष्ण की शुद्ध भक्ति कैसा प्राप्त कर सकता है, वो चीज को पूरी तरह जान सकता है। भागवत की ये सार माना जाएगा जिस जीवात्मा उद्धार होने के लिए कोई ज्ञान लिए किससे, केवल कपिलदेव भगवान की शिक्षा को प्राप्त कर लिया उनकी पार हो जाएगा। इतना महत्वपूर्ण 25 अध्याय से लेकर की 32 अध्याय 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 कितना 7 अध्याय हो गया। ये 7 अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है हम यदि कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक क्षेत्र में अग्रसर होने के लिए और कृष्ण को प्राप्ति करने के लिए, सीधे प्राप्ति करने के लिए, जिसी की बात को सुन करके आज की श्लोक में आप देखेंगे, आज जो श्लोक का चर्चा हो रहा है उसमें देवहूति माता अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त की है उसी शिक्षा को ग्रहण करके, शुद्ध भक्ति का पूरा शिक्षा कपिलदेव भगवान से, कैसा भक्तों की संगति करना, साधुओं की संगति कैसा करना, उनसे क्या क्या चर्चा क्या क्या सुनना, भगवान को कैसा ध्यान करना, कैसा जप करना, कैसा तपस्या करना, हर बात उन्होंने पुष्टि किए अपनी ये जो 7 अध्याय के अंदर में। और जिसको सुनकर के भगवत प्राप्ति सिद्धि प्राप्ति किए माता देवहूति, ये तो भौतिक शिक्षा किन्तु तो नित्य पार्षद भगवान की। और उन्होंने इसकी कल की अब जो चर्चा हुई थी श्लोक में सुने होंगे प्रपद उसी में प्रपद में लिखे देवहूति माता कहां गए, कपिल वैकुंठ, वैकुंठ अनंत कोटि वैकुंठ लोक है, अद्वित अनंत अनादि अनंत रूपम, भगवान की अनंत रूप है, द्वैत नहीं, एक व्यक्ति होते हुए भी भगवान अद्वैत द्वय नहीं है, एक है किंतु अनंत रूप में विराजमान किए, ऐसे अनंत लोक में विराजमान करते भगवान, एक है तो एक जगह तो लीला नहीं कर सकते, उसको लीला के लिए अनंत रूप है कि अनंत रूप में अनंत जगह पर उन्होंने लीला करते अनंत वैकुंठ में, जैसा जैसा भगवान के भक्तों की इच्छा है उसको भक्तों की इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान अनंत कोटि वैकुंठ बनाए के रखे सतों के लिए, और भगवान भक्तों के साथ में उसी उसी जगह पर उनकी लीला करते। कपिलदेव माता की देवहूति माता बना उनके लिए तो जसोदा के घर नहीं भेजेंगे, वो माँ बने उनकी माँ के लिए कपिल भगवान अपनी माँ का जो भाव है उनको, तो माँ तो एक जगह पर एक माँ रहेगा दूसरी जगह दूसरी माँ के तो दो दो माँ हो गए, इसलिए भगवान ने उनकी कपिल भगवान की एक माँ की लोक जो है जो वैकुंठ लोक है जहां पर माता पिता रूप में वहां भी भगवान उनकी है वैकुंठ लोक में, कपिल वैकुंठ नाम से प्रसिद्ध है जहां पर कपिल भगवान नित्य विराजमान करते। भगवान कृष्ण है किंतु वही उनकी लीला है, उन्हीं की लोक है, जहां पर वहां कपिल भगवान के लोग वहां पर गए। किंतु भौतिक संसार में उन्होंने जब शरीर छोड़े, जड़ शरीर को उन्होंने नहीं देखा, वो शरीर दिव्य शरीर था। ऐसा ही आप लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में मध्य नरोत्तम दास ठाकुर की लीला भी ऐसी हुई थी। नरोत्तम दास ठाकुर कोई सुना हुआ कोई सुने, बता देता हूं दोबारे। नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन तो भजन किए, भजन करते उन्हें सीधा अवस्था में शुरू से ही थे, ऐसे भगवान के प्रेम के अवतार थे, सिद्ध शरीर था, किंतु लीला में उनकी जो प्रस्तुत करते उनके शिष्य लोग उनके अनुयायी लोग उनकी गुरु रूप में मानते थे। ये हमारा गुरु जो है ये नित्य परिकर नित्य पार्षद है भगवान के धाम के, शिष्य लोग मानते थे, किंतु बाहर लोग तो नहीं जानते थे। बाहर लोग बोलते थे ये हम जैसे आदमी है। हाँ, वहां की बंगाल में जो प्रचार करते थे कि ब्राह्मण लोग उन्होंने दीक्षा देते थे, परिवार होते थे कायस्थ परिवार की थे, कायस्थ परिवार होते हुए वो ब्राह्मण लोगों को दीक्षा देते थे। वहां तत्कालिक कर्मकांडी ब्राह्मण लोगों को समालोचना करते थे, आलोचना करते थे, बोले कैसा है ये कायस्थ होकर कि ये ब्राह्मण को दीक्षा दे रहा है, ये तो सीधा नरक जाएगा। हाँ, ये गुरु बोलता है कायस्थ परिवार होकर के ब्राह्मण को सब दीक्षा देता है, ऐसा सब प्रचार करता है, उनको आलोचना करते थे। और ऐसे हुआ समय पर उनकी जब शरीर की था अप्रकट लीला करना, अप्रकट हो गए, जो अप्रकट हो गए शरीर छोड़ दे तभी बोले देखो ये बोलते हमारा गुरु भगवान की पार्षद है परिकर है और शरीर तो मुर्दा मर गया, ये नरक की गति हुआ सीधा कौ। सभी जगह पर वहां जो ब्राह्मण संप्रदाय थे तत्काल के समय उनको आलोचना करने लगे, किंतु उनकी गुरु की जो निंदा गुरु के प्रति उनकी अश्रद्धा भाव देख करके शिष्य लोग फोन गुरु जी जानते थे, शिष्य लोग हमारे गुरु जी भगवान के राधानी के परिकर है, यहाँ की गोलोकवासी है, गोलोक बृंदावन आए है, किंतु ये लोग तो जानते नहीं, शरीर तो छोड़ दिए, शरीर देख करके सब शिष्य लोग रोने लगे, बोले गुरु जी आपकी निंदा कर रहे हैं, आपकी निंदा करी वो लोग नरक सब चला जाएंगे, अपराध हो रहा है, कुछ कृपा करिए आप गुरु जी, आप ऐसा ही शरीर छोड़ दिए, शरीर ऐसा ही डेड बॉडी पड़ा, आपको डेड बॉडी को देखे ये तो नरक गया, कारण ये ब्राह्मण को सब दीक्षा दिया था, और सिद्ध शरीर का सिद्ध शरीर प्रमाण क्या है कि नरोत्तम दास ठाकुर पुनः अपनी डेड बॉडी से पुनः पुनः प्रकट हुए, पुनः डेड बॉडी जो शरीर छोड़े थे वो शरीर पुनः आ गए, पुनः आ करके पुनः कीर्तन जैसा करना होगा चेंज हो गए, तभी वो लोग ये सब चीज देख करके पूर्ण चमत्कार हो गए। इसके बाद में नरोत्तम दास ठाकुर दोबारा वो शरीर ऐसा नहीं छोड़े, फिर पुनः बोले शिष्य लोगों को बोले शरीर छोड़ने के लिए, जब शरीर छोड़ने का टाइम हुआ पुनः जहां गए सीधा बोले गले चलो वहां लेके गए कहां पद्मा नदी के किनार, बांग्लादेश में जो चलता है पद्मा नदी, पद्मा नदी के किनार में ले गए स्नान करने के, वहां नदी के किनारे बहुत भक्तों के साथ में खूब जोर से कीर्तन हुई और पद्मा नदी की जल से अभिषेक करने के लिए उनको बोले स्नान कराने के लिए, पद्मा नदी की जल से लेकर भक्त लोग जब उनके शिष्य लोग उनके अभिषेक कराए स्नान कराए, पद्मा नदी जल के साथ साथ उनके शरीर दूध जैसा पिघल गया नदी में, और शरीर नहीं रहा कोई हड्डी है ना मांस है ना खून क्या है, ये शरीर उनको देखा है सबके सामने में पब्लिक के सामने में, मेरा जो शरीर था अब मैं उसे अंतर कोई नहीं होता, ये शरीर तो ऐसा ही बना हुआ है क्योंकि वो दिव्य शरीर सिद्ध शरीर। इसी प्रकार देवहूति माता अपने शरीर को पानी रूप में नदी रूप में बह बना दिए, नदी रूप में बना दिए, यह है सिद्ध जीवन है, ये सिद्धि होता है। भगवान भागवत में 11 स्कंद भागवत में बताते हैं जब भगवान से चिंतन भगवान से लीन हो जाता है, भगवान के स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप और भक्तों के स्वरूप शरीर मध्य सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है, कैसा हो जाता है जब भगवान से भक्ति से इतना मग्न होता है, वो मग्न के कारण भगवान की जैसा स्वरूप वो भी सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। इसकी लीला एक उदाहरण देते भगवान भंवरा के उदाहरण दिए है, और कहां दिए दत्तात्रेय भगवान दिए 24 गुरु बनाए, 24 गुरु में एक भंवरा को गुरु बनाए थे, सुने ना एक भंवरा को गुरु बनाए, कैसा बना भंवरा, ये भंवरा जो जो पकड़ता खाता है कीड़ा पकड़ता है वो कहां से कीड़ा है वो टमाटो की कीड़ा की नहीं तो गोभी की कीड़ा, ना गोभी की कीड़ा ले जाता है, ऐसे सारे रेंगने वाला कीड़ा को पकड़ के लेके जाता है। पकड़ के भौरा क्या करता है, अपनी जो घर बनाया मिट्टी का घर बनाता है, कभी कभी आप लोगों को भी देखा होंगे मिट्टी में घर बनता है, जिसकी मिट्टी के घर में वो रेंगने वाला कीड़ा को छोड़ देता है। इसके बाद में वो घर के अंदर मुख भाव 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 आवाज करता है, अब मिट्टी में उसको ढक देता है। अब कुछ काल के समय बाद में वो जो भौरा रेंगने वाला कीड़ा होता है वो भौरा की चिंतन करता है हमेशा भय से, भय से, और दूसरी चिंतन नहीं होता, क्योंकि भौरा उसको पकड़ लेके आया था खाने के लिए, उसी की चिंतन करते 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 वो रेंगने वाला कीड़ा उसमें भौरा के रूप हो जाता है, भौरा के रूप आ जाता है। देखो भौतिक संसार में भी ये संसार की एक कीड़ा दूसरी कीड़ा रूप कीड़ा को रूप ले जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार एक भगवत भक्त भगवान की भजन में उनकी मग्न में जब रहता है, चिंतन में रहता है, वो उसी स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ये भगवान ने बात शिक्षा दिए 24 गुरु में एक भौरा को उदाहरण दे करके। यदि भगवान के भजन में भक्ति में यदि लीन रहे कोई भी भक्त, वो अवस्था को सिद्धि प्राप्त कर सकता है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये उपाय ये बताए। यहाँ देवहूती माता तो भगवान की तो परिकर है, भक्त महात्मा बने, किन्तु उनके जीवन को सिद्धि प्राप्त किए दिए बताए। ऐसा ही कोई भक्त भगवान की चिंतन करके स्वरूप में ये करे, ये शरीर मध्य दिव्यता को प्राप्त कर सकता है, यही शरीर में रहते हुए भी सिद्धि प्राप्त कर सकता, भगवान धाम को जा सकता है। ये शरीर सशरीर में, जैसे सशरीर में ध्रुव महाराज भी गए थे, हाँ मूर्ति के सिर पर उन्होंने पैर रखी, विमान में वैकुंठ में आए हुए जो विमान उसमें चढ़े भगवान धाम गए। ऐसा ही उनकी माताजी भी देखे उसी टाइम से छोड़े, देखे मतलब माताजी की याद आ गया, ध्रुव महाराज की जब याद आ गया सब उस वैकुंठ जा रहे माताजी, देखे माताजी दूसरे विमान में गए, उनके पिताजी भी दूसरे विमान में थे, ये सब सौसरी में भगवान धाम गए। अब कौन सा भक्तों की किस प्रकार भाव है, वो किस प्रकार शरीर छोड़ता है, ऐसा ही नहीं सभी सौसरी में अपने शरीर को लेके जाएंगे, सभी भक्त तो ऐसा ही नहीं चाहते, ये भी देखने का विचार करने के लायक योग्य है। बोले क्यों सभी भक्तों तो ऐसा ही शरीर छोड़ना चाहिए, कौन चाहता है ये जड़ शरीर को लेके जाएगा, कि इसी प्रकार स्वरूप में उनके भाव है। भले भौतिक संसार में किसी पुरुष शरीर हो सकता है, किस स्त्री स्वरूप होता, किंतु उनकी भावना भगवान के साथ में जो रिलेशन है वो क्या है, कैसे बता हो चलेगा किसको। हाँ कोई पुरुष शरीर में है, भले भगवान की गोपी भाव में रह के शरीर छोड़ा, वो क्यों पुरुष शरीर लेके जाएगा। कोई स्त्री है वो भगवान के सखा भाव से शरीर छोड़ता है, वो क्यों स्त्री शरीर लेके जाएगा, उनको सखा शरीर मिलेगा। इसलिए कौन सा भक्त शुद्ध भक्त अपनी शरीर को छोड़ता, कौन शरीर छोड़ता हम कैसे कह सकते, सभी तो नहीं ले सकते, किंतु ऐसा ही सिद्धि अवस्था हुआ है नरोत्तम दास ठाकुर अपनी लीला में ये दिखाएगी। ये के जिस प्रकार देवहूति माता अपनी शरीर को शरीर की त्याग की है, इस प्रकार ये सिद्ध अवस्था है। इसके लिए भजन तो बहुत जरूर चाहिए, और भगवान चैतन्य महाप्रभु परम करुणा दया अवतार है, उनके शरण में यदि हम जाएंगे, उनकी कृपा से हम लोग को ये शिक्षा हमको समझ में आ रहा है, नहीं तो समझने का किसी बस में नहीं है। ये जो सिद्धांत आते हैं, ये कपिलदेव भगवान की शिक्षा तो बहुत लोग पढ़ते हैं, किंतु कितना लोग उनके जीवन में भक्ति में कृष्ण से जुड़ जाते, किंतु भगवान श्री चैतन्य महापुरुष की परम दया है, करुणा है, उनकी परंपरा में आने वाले व्यक्ति वो सिद्धांत को बहुत सहज में समझते हैं। ये है भगवान चैतन्य महापुरुष की करुणा है, कृपा है। यदि भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरण में कोई जाए, अभी उनकी जन्म तिथि आने वाले हैं गौरांग महाप्रभु की, उनकी जन्म अवसर पर उनकी शिक्षा, उनकी दर्शन, उनकी आधार पर अपने जीवन को हम यदि बिताएंगे, निश्चित जीवन की सफलता आएगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा बहुत जरूर है सभी के लिए, और उनकी निर्देश है भारत में जो भी जन्म हुआ है उनकी, मेरे को यदि ये प्रसन्न करने के लिए कृष्ण व्यतिरक न गाइवे आर, भगवान चैतन्य यदि मेरे को खुशी करने के लिए चाहते, मेरा व्यतिरेक और दूसरी चर्चा नहीं करना चाहिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु यही बात बताते, यदि प्रसन्न करने के लिए, अब वो वास्तविक व्यक्ति का कल्याण के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु बोल के रखे। और भारत में जो भी जन्म हुआ है भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को प्रचार प्रसार करना चाहिए। गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने के लिए श्रील प्रभुपाद बूढ़े उम्र में 70 साल उम्र में यहां से चला गए अमेरिका। अब देखिए 70 साल में उम्र में हम कुछ इतना सबको नहीं होगा यहाँ बैठने वाले जितने हैं, इतना उम्र में 70 साल में बूढ़े उम्र में कितना बीमारी होता है शरीर की, बुढ़ापा में होता है, इतना तकलीफ को सहा करके उन्होंने अमेरिका चला गया जहाँ की ठंडी देश में उनको कोई सुविधा नहीं था, कोई फ्लाइट टिकट में नहीं था उनको जाके घूम के आए। हाँ, एक पानी के जहाज में चला गया। इसलिए प्रभुपाद के आदर्श को रक्षा करते हुए, भगवान चैतन्य महाप्रभु के आदेश को पालन करते हुए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के आदेश पालन करते हुए जो भी इस्कॉन में जुड़े हुए भक्तों को हमेशा प्रचार की भावना रखना चाहिए। ये मिशन केवल प्रीचिंग मिशन है, ये संस्था जो बना है प्रभुपाद बना है कि प्रभुपाद जी की गुरु जी की जो आदेश है वो जीवन अच्छी जार करते प्रचार, जान अच्छे से तो करते प्रचार, उनको प्रचार करना चाहिए, लोगों को शिक्षा देना चाहिए भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा। जो भी आचरण करते, जो भी भजन करते, जितना भी माला कर रहे हैं कि जो भी भोग लगाए खा रहे वही चीज को दूसरे को बताना चाहिए, इससे समाज की संसार की कल्याण हो सकता है, नहीं तो दूसरी किसी प्रकार कल्याण नहीं हो सकता समाज की देश की। सारी जीव बंधने पड़ा हुए फंसे हुए उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु को संदेश हमेशा सुनाना चाहिए, जितना प्रयास करे वो भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकता। भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपा को प्राप्त करेगा, श्रील प्रभुपाद जी कृपा को प्राप्त करेगा, वही कृपा ही उनको जीवन की सिद्धि दिलाएगा, जीवन की सिद्धि प्राप्त करने के लिए यही उपाय है। हम गौरांग महाप्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु के आदेश को, उनके संदेश को प्रचार करना चाहिए। जस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट, भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कर लिया वही सिद्धांत अपने आप उनको प्राप्त हो जाएगा, सारी सिद्धांत प्राप्त हो जाएगा, सारी संशय दूरीभूत हो जाएगा और कृष्ण के चरण में अहितु की भक्ति प्राप्त कर लेगा। अपने बल पर हम भक्ति नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद बताते हैं एक है बंदर का बच्चा, एक है बिल्ली का बच्चा। बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ के रखता है अपनी प्रयास में, हाँ, किंतु बिल्ली का जो बच्चा होता है वो बिल्ली का बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता, बिल्ली उसको पकड़ के लेके जाता है। हाँ, इसी प्रकार उनको बंदर का बच्चा ना पड़ के अपनी प्रयास मत करके हमको ऐसी प्रकार रहना चाहिए। बिल्ली चूहा को पकड़ता है अपनी मुख में, अपनी बच्चे को पकड़ता है। इस पर भगवान अपने भक्तों को भी रक्षा करते हैं और संसारी जीव को देखवाला करते हैं। संसारी जो भगवान के नास्तिक हैं उनको भी ये करते हैं, किंतु उनके सामने हिरण्यकशिपु रूप में पकड़, जैसा हिरण्यकशिपु रूप में नरसिंह भगवान में पकड़ होगी करते हैं, किंतु भक्तों को प्रहलाद महाराज जैसा ही कृपा कर रखते हैं। ऐसा ही जैसे हम बिल्ली के बच्चे जैसा ही हम अपने भगवान की भरोसा रखेंगे, भगवान हमको निश्चिंत रक्षा करेंगे और वो उद्धार करेंगे, उनकी टेंशन है, हमको केवल भगवान चैतन्य महाप्रभु के आदेश, श्रील प्रभुपाद जी के निर्देश, उनको पालन करते हुए उनके संदेश को घर घर में जाकर प्रचार करना चाहिए, बताना चाहिए। भगवत गीता के बारे में बताना चाहिए, हरिनाम बारे में बताना चाहिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु की यही संदेश है। जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु है तारा ही देश। भगवान चैतन्य जिसको देखते कृष्ण के उपदेश, कृष्ण के उपदेश क्या है, भगवत गीता है, और गीता के संदेश सुनाओ। गीता उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी गीता उन्हें पुस्तक बेच किया। प्रभुपाद प्रीचिंग मीन सेल द बुक, प्रभुपाद बोलते हैं ये प्रीचिंग माने प्रचार, मतलब है मेरा बुक को किताब को सेलिंग करो और पढ़ेगा, फ्री में नहीं देना, फ्री देने से पढ़ेगा नहीं, हाँ फ्री देने से क्यों, सेलिंग करो कि मेरा किताब को प्रचार करो। ये प्रचार जो करेंगे भगवान चैतन्य महाप्रभु को आदेश पालन करते, श्रील प्रभुपाद जी का आदेश पालन करते हुए प्रचार करेंगे, वो अपने आप भगवान की कृपा मिल जाएगा, वो जीवन में सिद्धि प्राप्त कर लेगा। यही जीवन की सिद्धि है, यही सिद्धि है। सिद्धि भगवान केवल गुरु के आदेश पालन करना और कृष्ण के आदेश, भगवान चैतन्य महाप्रभु के आदेश पालन करना। कहा कलयुग के राजा है भगवान गौरांग महाप्रभु है, कलयुग में जो राजा के शरण में रहते राजा के निर्देश को आदेश को पालन करना जाता है। ये राज्य में रहकर राजा के आदेश पालन नहीं करते, इसका मतलब माना जाएगा क्या है, एक क्रिमिनल है, वो राजा की अधीन स्वीकार नहीं करता। ऐसे कलयुग में जो है आराजा है वो गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु। ये बात जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बोलते थे। वृंदावन में करीब 100 साल करीब रहे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। 100 साल बाद में बोलते उनकी जो शिष्य थे उनके जो सेवक थे बैरागी दास बोलते देखो बैरागी अभी मेरे को यहाँ ब्रज में नहीं रहना है, क्या अभी राजा की शासन चलता है, राजा के अधीन में जाके शरीर छोड़ देना ठीक है। इसलिए उन्होंने 100 साल ब्रज में बात करेगी छोड़गी, उन्होंने नवदीप धाम चला गए। नवदीप में जाकर के गौरांग महापुरुष शरण रहेगी वृद्ध उम्र में, जब पैदल में चलने का शक्ति भी नहीं था, उनको एक टोकरी में बैठा करके बैरागी दास यहाँ वृंदावन से लेके गए थे नवदीप में। नवदीप में जा करके वहां और भी बहुत साल रहे, करीब रह करके 135 साल में उन्होंने शरीर को त्याग किया। बोले राजा की शासन है गौरांग महाप्रभु की शासन चलता है चैतन्य महाप्रभु की, उनके शरण ग्रहण बिना ये जीवन की किसी कल्याण नहीं हो सकता। कॉलेज में सुविधा सुझा महावदान्य अवतार है, उनके शरण में जाना चाहिए सभी को और उनकी शिक्षा को दूसरे को प्रचार करना चाहिए। उनकी शरण माने उनकी शिक्षा को प्रचार करो, गौरांग महाप्रभु के यही निर्देश है। निर्देश है कृष्ण को उपदेश को शिक्षा दो, गौरांग महाप्रभु यही होते सबको बताओ, सबको जहां देख रहे सबको परिवार रिश्तेदार जो भी है सबको कृष्ण भावना में भावित करना चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, यही जीवन की सिद्धि है। हमारे कभी हम एक है प्रपर कई बार उदाहरण देते, ढिंकी कहां भी जाए धान कूटेगा, ढिंकी समझ रहे हैं ना, ढिंकी मतलब जो धान कूटने वाला होता है, जिस स्वर्ग में जाए वो ढिंकी का काम दूसरी कुछ नहीं होता है। हाँ, जो ढिंकी आपके घर में रहे वो धान भी कूटेगा, धान से जो चावल निकालता ना होते ना चावल निकालते उसको ढिंकी बोलते थे पहले जमाने में से, ढिंकी था प्रभुपाद बोले ढिंकी यदि जाए स्वर्ग में जाए वो धान कूटेगा। ऐसा ही भक्त की वो कोई काम नहीं, दूसरी कोई काम नहीं होना चाहिए, केवल भगवान के निर्देश को पालन करना, भगवान की जो आदेश है वो पालन करना, वही जीवन की सफलता। भक्तों की और काम केवल भगवान की सेवा, उनके आदेश जो है उसको आदेश को पालन करना। ठीक है, कोई प्रश्न है कोई जिज्ञासा यदि बता सकते हैं। यही है कपिल देव भगवान की तो आश्रम है गंगा सागर में है, और जो लोग गए हैं हम तो नहीं गए देखे होंगे, और आज भी प्रपात बता था आज भी लोग जाकर के वहाँ कपिल देव भगवान की आश्रम जाते उनसे आशीर्वाद लेते हैं सांख्य दर्शन की शिक्षा के लिए। कपिल देव भगवान का आश्रम गंगा सागर बंगाल की खाड़ी में है। कितना भक्त लोग गए हैं थोड़ा हाथ उठाइए, गंगा सागर, गंगा सागर गए माता जी? अरे अच्छा, वहाँ कपिल देव आश्रम देखे, कपिल भगवान की आश्रम है। अच्छा बहुत बड़ा, बहुत अच्छा आश्रम कपिल भगवान की है ऐसा। अच्छा, किसकी कोई प्रश्न है कोई जिज्ञासा है कोई कमेंट है कोई है थोड़ा से यदि होगा तो। ये स्वर्ग के अधिवासी हैं। हाँ, ये स्वर्ग के सब अधिवासी यहाँ है, सब अलग अलग जैसा ये होता ना अमेरिकन है यूरोपियन है हाँ इंडियन है, ऐसे ही देवलोक में मध्य भी सब अलग अलग सब है। वहाँ गंधर्व भी रहते हैं, सिद्ध लोग रहते हैं, सिद्ध लोग में सिद्ध लोग भी तो हैं, उसके ऊपर लोग स्वर्ग के ऊपर जो लोग हैं वहाँ सिद्ध लोग हैं, मतलब पृथ्वी की ये पृथ्वी के ऊपर और 6 लोक हैं, पृथ्वी लोग को भूलोक बोलते हैं, इसके बाद में होते भूवलोक, भूवलोक में जो घोष्ट आदि रहते भूत प्रेत भूत लोग रहते भूत प्रेत रहते भूत स्वर्गोलोक आएगा, स्वर्गोलोक में देवता लोग डेमीगॉड रहते जो 33 करोड़ देवादेवी रहते, भू भू भूव स्वर्गलोक पर इसका मोहलोक महर्षि लोग रहते हैं, मोहरलोक सिद्ध लोग रहते हैं सिद्धि प्राप्त में, मोहलोक जनलोक जनलोक तपलोक तपस्या करने वाले जो सप्तर्षि रहते हैं, और सत्यलोक ब्रह्मा जी रहते हैं। ऐसा ही 14 लोक में जो 7 लोक 6 लोक पृथ्वी लेके 7 लोक है ऊपर रहने वाले आदिवासियां हैं। अब विशेष कर ये जो वर्णन है गंधर्व है अप्सरा है ये सब स्वर्ग की वासिंदा है, 33 करोड़ देवादेवी के अंदर में यही लोग हैं, अप्सरा जो हरिका है ये सब स्वर्गलोक की वासी हैं। जब हिमालय तरफ से जा रहे थे पहले जमाने में आजकल हिमालय को आते होंगे आप तो देखा नहीं, हमको पता नहीं, हम तो भूत प्रेत को नहीं देख सकते, देवता को क्या देखेंगे। ये पृथ्वी के ऊपर है भूत लोक, जो माने भूत प्रेत रहते, भूभुवलोक है, भूभुवलोक में भूत प्रेत रहते, हमें उनको भी देख नहीं पाते, और देवता को देखना दुर्लभ है। किंतु पहले जमाने में देवताओं की दृश्य होता था, द्वापर युग में, तृतीय युग में, सत्य युग में देवता लोग जब धरती में आते थे, विशेषकर हिमालय में, वो सब अलग अलग लोग देखते थे, दर्शन करते थे, देवलोक क्यों देखते थे, गंधर्व लोग को देखते थे। और सुने होंगे ये गंधर्व लोगों को पकड़ लिए थे उनको, कैसे को दुर्योधन को पकड़ लिए थे, भीम के साथ में भी लड़ाई हुआ, ये सब गंधर्व लोग के साथ में हुआ, ध्रुव महाराज की भी लड़ाई हुआ था गंधर्व के साथ में, ऐसे ही ये सब प्रैक्टिकल धरती में सब देखते थे लोग, उनके साथ मिलते थे, देवता लोग भी आते थे, और देवता लोग प्रकट होते थे अलग अलग अच्छे अच्छे भक्तों के घर में आते थे, उनकी बातचीत करते थे। किंतु आज के जमाने कॉलेज में कोई देवता लोगों को दर्शन करने दुर्लभ हो गया, केवल देवताओं का मूर्ति किसी विग्रह के माध्यम से हम देखते हैं, उनसे भी जो भेंट चढ़ाते भोग चढ़ाते, किंतु वास्तव में हम देख नहीं पाते उनको, भूत को नहीं देखते उनको क्या देखेंगे। इतना हमारा कमजोरी हो गया, ये है स्वर्गवासी है, और क्या, और कोई यह करना है, और कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, हाँ, नहीं देवहूति नहीं है, देवहूति तो दूसरी है लीला है, भगवान जब कंस के कारागार में प्रकट हुए, वसुदेव देवकी बोल रहे हैं, हे माताजी, हे पिताजी, आप लोग बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की, तपस्या करने के नाते जो तपस्या की मेरे को प्रार्थना किए थे, मैं आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था, तभी तुम लोग तीन बार मेरे को बोलते पुत्र 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 बन जाओ, मैं इसलिए मैं तीन बार तुम्हारा पुत्र रूप में आया हूँ। प्रथम पुत्र मेरा जो हुए, मेरा नाम तुम थे पुष्णी, देवकी था पुष्णी, पुष्णी गर्भा नाम से भगवान के नाम हुआ था, पुष्णी गर्भा भगवान के था, आओ वसुदेव थे सुतापा, सुतापा पुष्णी की, दोनों के में भगवान पुष्णी गर्भा उनके नाम पड़ा था, पुष्णी गर्भा भगवान प्रकट हुए थे। दूसरी बार में जन्म हुआ, अब अदिति बने, और ये कश्यप मुनि थे, जो मैं बावन भगवानों में प्रकट हुआ, अब तीसरा बार मैं कृष्ण आया, आओ तुम वसुदेव और देवकी बन गए, ये तीन बार भगवान बोलते मैं तीन बार तुम्हारा पिता पुत्र पुत्र रूप में आया हूँ, ये बात बताए, ठीक है। और ऐसे ही भगवान ही खाली कपिलदेव भगवान खाली देवभूति माता को बोले, देवभूति माता कोई भगवान को प्रेरणा नहीं किए मेरा पुत्र बनने के लिए, कोई लिखा है भागवत में लिखा नहीं हुआ, अब समझे, ये भगवान की देखो कृपा है, ये चीज सुन ले, समझना चाहिए भक्तों को, सुनना चाहिए, देवोती माता भगवान को पुत्र पाने के लिए कभी तपस्या नहीं किया, ऐसा लिखा नहीं हुआ, देवोती माता कभी बोले मेरे भगवान मेरे पुत्र बन जाओ, किंतु भगवान की कृपा दया देवोती माता प्रति हुई, और कैसा हुई है, वो एक शुद्ध भक्तों को उन्होंने चुने थे अपने पति रूप में, कौन थे, कदर मुनि को, और कदर मुनि को भगवान बोले थे मैं तुम्हारा पुत्र रूप में आऊंगा, वरदान दिए थे कदर मुनि की मैं आपको पुत्र रूप में आऊंगा, अब उन्होंने इतना तपस्या किए थे भगवान को पाने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान अपनी तरफ से वरदान दिए मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, अब भगवान उनको तो चुन लिए थे भगवान पुत्र रूप में आऊंगा, किंतु देवहूति चुने थे किसको, कदर मुनि की पति रूप में एक शुद्ध भक्त को चुने थे, वो तो राजकन्या थे, इतना सुंदरता था भागवत में वर्णन है, उनको एक बार गंधर्व चित्ररथ गंधर्व स्वर्ग में जा रहा था, अपनी विमान में जा रहा था, और जब ये छोटे थे माता देवहूति इतना सुंदर थे, उनको छात के ऊपर गेंद के खेल रहे थे, गेंद फूल गेंद खेलते ना, ऐसे देवहूति माता खेल रहे थे, उनको सुंदरता देख कर कि चित्र जो गंधर्व थे ना उनका विमान से गिर गए, इतना सुंदर थे देख करके, और वो तो कितना बड़े बड़े राजा को चुन सकते थे, किसी को नहीं चुने, और इतने जंगल में रहने वाला है, इतना एक साधु को सन्यासी वैसे जो विरक्त है, उनके पास कोई कुटिया भी ठीक से नहीं था। हाँ, इतना सुविधा कुछ नहीं, भौतिक सुविधा ऐसे ही कुछ नहीं रखे थे। इतना विरक्त में भजन करने वाला व्यक्ति, उनको चुन लिए थे ये पति रूप में। क्यों चुने थे? कहा जानते, ये महान भक्त है, सुने थे नारद से, बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग आते थे, उनसे सुनते थे, उनकी महिमा सुने थे। किनकी? इतना किसके? कदर मुनि की। और इतना महान भक्त वो चुने थे, केवल शुद्ध भक्त को चुन लेने के कारण से वो उनकी भगवान की मां बनने के लायक हो गए। ये है, ये सीखने का बात है। एक शुद्ध भक्त को चुनने के कारण से हो गए, ये सीखा। शुद्ध भक्त की कृपा से उनको भी मां बनने का सौभाग्य मिल गया भगवान की, अपने आप तपस्या की। यही तो जीवन की शिक्षा इससे मिलता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अरे हरि बोल। ग्रंथराज भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।